हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। युग जल्द से जल्द अगले पड़ाव पर पहुंचना चाहता था। छठा पड़ाव श्रीलंका में था। उन लोगों को सातों पड़ावों के जो नक्शे मिले थे उनमें सातवें पड़ाव के बारे में कुछ खास नहीं लिखा था। उससे एक बात साफ थी, उन्हें सातवें पड़ाव के बारे में छठे पड़ाव के जरिए ही पता चल सकता था। इस बार मलिक युग के साथ नहीं था तो उसे सब कुछ अकेले ही संभालना था। उसे कृषा के साथ अकेले ही पड़ाव पर जाना था। आश्चर्य की बात ये थी कि अगला पड़ाव श्रीलंका में अर्जुन और कृषा के घर में था। कृषा और अर्जुन काफी सालों से वहां रह रहे थे लेकिन उन्हें कभी वहां किसी तरह का खजाना नहीं मिला। युग और कृषा श्रीलंका जाने के लिए निकल गए थे। जिस लड़के के घर पर वो दोनों रुके थे उन्होंने ही उनके वहां जाने के इंतजाम किए थे। युग और कृषा जहां थे वहां से वो दोनों लगभग 15 घंटे का सफर तय करके कोलंबो पहुंचे और फिर कोलंबो से रतनपुरा टाउन जहां पर कृषा और अर्जुन रहते थे। वो जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी, टाउन छोटा था पर काफी खूबसूरत था। वहां आते ही वो दोनों अर्जुन के घर पर पहुंचे। उन कॉलोनी में एक जैसे छोटे घर बनाए हुए थे। कृषा को आज भी अपने घर के पासवर्ड याद थे इसलिए उन्हें वहां तक जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वहां कोई सिक्योरिटी में नहीं थी ये देखकर युग को हैरानी हुई। कृषा और अर्जुन का घर ज्यादा बड़ा नहीं था। अंदर आते ही युग ने चारों तरफ देखा और फिर मुंह बनाकर कृषा की तरफ देखकर कहा, लाइक सीरियसली, तुम दोनों इस बॉक्स में रहते थे? वो घर ज्यादा बड़ा नहीं था, एक छोटा सा लिविंग रूम, दो बेडरूम, किचन एरिया और आगे छोटा सा गार्डन एरिया। उस घर से कुछ ही छोटा युग का रूम होगा। कृषा युग की तरफ देखकर कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैंने बहुत सिंपल लाइफ बिताई है। मुझे नहीं पता था मैं इतनी रिच हूँ, वरना मैं इस घर में तो कभी नहीं रहती। हाँ, इस घर को देखने के बाद मैं मान सकता हूँ कि तुमने सच में एक सिंपल लाइफ बिताई है। वैसे कैसा लग रहा है अपने पुराने घर में आने के बाद? युग ने कृषा की तरफ देखकर पूछा। कृषा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे पुराने दिनों को जी रही हूँ। बोलते हुए कृषा इमोशनल होकर उस घर को देखने लगी जहाँ उसकी ज्यादातर यादें बीती थीं। फिर उसने युग का हाथ पकड़कर कहा, चलो मैं तुम्हें अपने रूम में लेकर चलती हूँ। युग कृषा को अपने रूम में लेकर आई जो एक एवरेज रूम जितना बड़ा था। वहाँ बीच में एक क्वीन साइज बेड था और साइड में दो अलमारियाँ, एक छोटी सी ड्रेसिंग बनी हुई थी और दूसरी तरफ बुक रैक। पूरे कमरे में कृषा की फोटो के पोस्टर लगे हुए थे। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि कृषा को फोटोग्राफी और मॉडलिंग का शौक रहा होगा। युग ने कृषा की एक फोटो देखी जिसमें उसने बिकिनी पहन रखी थी। वो उस फोटो को छूते हुए बोला, कभी इस तरह तुम मेरे सामने तो नहीं आई? कौन है वो फोटोग्राफर जिसने इस फोटो को क्लिक किया था? आई स्वेर, मेरे सामने आ गया तो उसे गोली मार दूंगा। युग की बात सुनकर कृषा ने उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखा और फिर कहा, तुम इतना जेलिस क्यों हो रहे हो? हम जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं ना? ये घर काफी छोटा है तो खजाना ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम बार बार उन पड़ावों को खजाना क्यों बोलती हो? युग ने सिर हिलाकर पूछा। क्योंकि वहां हर बात कोई ना कोई खजाना मिल ही जाता है। तुम्हें क्या लगता है इस घर में भी कोई पुराने जमाने की डिजाइन की वैसी ही सेफ होगी या कोई अंडरग्राउंड बेसमेंट? वैसे तुम्हें बता दूंगी, इस घर में कोई अंडरग्राउंड एरिया नहीं है, कृषा ने जवाब दिया। कृषा की बात सच थी, घर काफी छोटा था। इस वजह से ये पता लगाना मुश्किल था कि वहां किस जगह पर क्या एसेट हो सकता है। युग ने कृषा को वहीं पर छोड़ा और फिर घर को देखने लगा। वो घर वाकई काफी छोटा था और कोई भी सीक्रेट एरिया नहीं बनाया गया था। युग ने आधे घंटे में पूरे घर को गौर से देख लिया था लेकिन फिर भी उसे ऐसा कोई हिस्सा नहीं मिला था जहां कुछ भी छुपाया जा सके। छठा पड़ाव उसके लिए बहुत जरूरी भी था क्योंकि उसके बाद ही वो सातवें पड़ाव पर पहुंच सकता था और फिर वहां से किंग बन सकता था। युग की तरह कृषा के चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे क्योंकि उन्हें वहां कुछ नहीं मिला था। कुछ न मिलने की वजह से युग को काफी गुस्सा आ रहा था। वो रिलैक्स होकर सोचना चाहता था लेकिन गुस्से में उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। युग ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, काम डाउन योग, यू नीड टू रिलैक्स, तभी कुछ सोच पाओगे। बोलते हुए उसकी नज़र कृषा पर गई। कृषा मज़े से सोफे पर बैठी फ्रूट्स एंजॉय कर रही थी। उसे देखते ही युग के चेहरे पर ईविल स्माइल आ गई थी। इस वक्त वो किसी बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। युग कृषा के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, लेट अस गो कृष, कुछ क्रिएटिव करते हैं। बोलते हुए उसने आई विंक की। कृषा अच्छे से समझती थी कि युग जब कुछ क्रिएटिव करने को कहता था तब उसका मतलब क्या होता था। उसने ना में सिर हिलाते हुए मासूमियत से कहा, अभी नहीं युग, अभी मुझे बहुत भूख लगी है। तुम अपना खजाना ढूंढो, मैं तब तक इन्हें खत्म करती हूँ। रही बात कुछ क्रिएटिव करने की तो वो हम रात को करते हैं ना? डोंट वरी, आई विल फीड यू। और रही बात कुछ क्रिएटिव करने की तो वो मुझे अभी करना है, युग बोला और कृषा के पास आकर उसे बाहों में उठा लिया। युग उसे रूम में लेकर गया और बेड पर लेटा दिया। युग ने अपना जैकेट निकाला और फिर शर्ट निकालकर फेंक दी। युग फिर कृषा के ऊपर आकर लेट गया। उसके इरादे समझते हुए कृषा मासूमियत से बोली, युग प्लीज नहीं ना, मुझे भूख, कृषा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि युग ने अपने होंठ कृषा के होठों पर रख दिए। फिर कृषा भी युग का साथ देने लगी। युग उस वक्त बेड पर कृषा के साथ जरूर था, लेकिन उसका दिमाग और ही काफी था। युग ने अपने मन में बड़बड़ाकर कहा, थिंक यू ग्राना, थिंक लाइक यू, लाइक अ डेविल, ओनली यू कैन डू दिस। फिर युग ने आंखें बंद दी और घर के हर एक हिस्से को अच्छे से याद करने लगा। वो अपने मन में बोला, घर में कोई सीक्रेट एरिया नहीं हो सकता। उसे बनाने के लिए वुडन प्लैंक यूज होता, लेकिन यहाँ कोई भी खोखला हिस्सा नहीं है। अगर कुछ है तो वो गार्डन में ही होगा, पर गार्डन एरिया काफी छोटा है। थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि सूख चुके हैं। अगर उन्हें उखाड़ कर देखो तो भी कुछ नहीं मिलने वाला। फिर कौन सी जगह हो सकती है? घर के बारे में सोचते हुए अचानक युग के दिमाग में कुछ सूझा। युग उस वक्त कृषा की नेक से किस करते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। तभी अचानक वो उसके ऊपर से खड़ा हुआ और कृषा की तरफ देखकर कहा, मिल गया छठा पड़ाव, वो गार्डन में ही है। हमें अभी चलना होगा, तुम्हें कुछ सामान लाने होंगे। कृषा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो हैरानी से युग की तरफ देख रही थी। कृषा ने अजीब सा चेहरा बनाकर कहा, तुम क्या कह रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा है। पहले तुम्हें इस घर में खजाना ढूंढना था, वहाँ कुछ नहीं मिला तो फिर तुम्हें कुछ क्रिएटिव करना था। तुमने मुझे खाना भी नहीं खाने दिया और यहाँ बेड पर लेकर आ गए। तुम तो इस तरह बीच में अपना काम नहीं छोड़ते हो। हाँ, नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन फिलहाल क्रिएटिविटी से ज्यादा जरूरत है कहीं और दिमाग लगाना। तुम कुछ नहीं समझोगी, बस मेरे साथ चलो, युग ने जल्दबाजी में जवाब दिया और बात करते हुए अपना शर्ट पहनने लगा। उसके बाद युग कृषा के इंतजार के बिना ही कमरे से बाहर चला गया। कृषा ने अपने कपड़े सही किए और सिर हिलाकर कहा, कई बार ये सच में बहुत अजीब हो जाता है और ऊपर से कुछ बताता भी नहीं है। इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है वो इसके अलावा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सच एन अनप्रिडिक्टेबल पर्सन। कृषा उठी और फिर युग के पीछे जाने लगी।
युग गार्डन एरिया में था। वो गार्डन के पीछे की तरफ बने एक ग्रेव के सामने खड़ा था। कृषा उसके पीछे आई। उसने देखा युग उस ग्रेव को काफी गौर से देख रहा था। कृषा की मौजूदगी को एहसास करते हुए युग ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ये ग्रेव यहाँ क्यों बनाई गई है? क्या सच में यहाँ किसी की डेड बॉडी है, या फिर ऐसे ही यादें संजोने के लिए इसे यहाँ बनवाया गया है? कृषा ने उसकी तरफ उदास चेहरा बनाकर कहा, एक्चुअली ये मेरे नानू की है। यहाँ उनकी डेड बॉडी नहीं है, लेकिन मेरी मॉम और अम्मू पहले यहीं पर रहती थीं। मैंने बताया ना, ये घर मेरी मॉम का है। उनकी डेथ के बाद शायद उन्होंने नानू की याद में इसे बनाया होगा। मैंने अपने नानू को कभी नहीं देखा, पर वो एक अच्छे इंसान ही रहे होंगे, तभी ये ग्रेव यहाँ बनी है। कृषा काफ़ी इमोशनल होकर सब बता रही थी, जबकि युग को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। युग बिना किसी भाव के बोला, जाओ जाकर कोई ऐसी चीज़ लेकर आओ जिससे इसे तोड़ा जा सके। युग की बात सुनकर कृषा हैरानी से बोली, आर यू मैड? मैं अपने नानू की आखिरी निशानी तुम्हें नहीं तोड़ने दूंगी। इसके नीचे कुछ नहीं है युग, मुझे आज भी याद है मॉम डैड के लिए जगह कितनी स्पेशल थी। ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं याद, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि आखिरी वक्त मैं उनके साथ इस जगह पर आई थी। युग ने आईज रोल की और कृषा को तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, कमॉन क्रिश, कौन सा उनकी डेड बॉडी यहाँ गड़ी हुई है जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? जो बोला है वो चुपचाप लेकर आओ, वरना मैं खुद ले आऊँगा। युग ने कृषा को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी बातों से उसे कन्फर्म हो गया था कि हो ना हो उस कब्र के नीचे ही छठे पड़ाव की एसिड रखी हुई थी, वरना मिस्टर शांतनु सिंघानिया और कृतिका सिंघानिया मरने से पहले कृषा के साथ उस जगह पर कभी नहीं आते। कृषा ने नामे गर्दन हिलाई और झट से बोला, फिर भी मैं तुम्हें नहीं तोड़ने दूंगी। कृषा युग के सामने आकर खड़ी हो गई। युग ने बोरियत भरे लहजे से कृषा की तरफ देखा और कृषा के साइड से निकल गया। उसे वहां थोड़ी दूरी पर गार्डनिंग का सामान उठाया। युग ने हथौड़ा और फावड़ा उठाया और वापस ग्रेव के पास आ गया। कृषा ग्रेव के ऊपर आकर बैठ गई और जिद करने लगी। वो बोली, मेरे होते हुए तुम मेरे नानू की इंसल्ट नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। युग ने कृषा की बात की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, वो दूसरी तरफ जाकर हथौड़े से उसे फोड़ने लगा। कृषा को हैरानी हो रही थी कि उसे मना करने के बावजूद युग उसे तोड़ भी कैसे सकता था। उस कब्र को लगभग आधा तोड़ने के बाद युग कृषा के पास पहुंचा। कृषा युग की तरफ देखकर सिर हिलाकर बोली, तुम बहुत क्रूअल हो युग राना। टेल मी समथिंग न्यू बेबी, ये मैं पहले से जानता हूँ। चलो उठो, वरना मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा, युग ने कोल्ड वॉइस में कहा। नहीं हटूंगी, कृषा ने भी जिद पकड़ ली। ओके, एज योर चॉइस, युग ने भौंया उठाकर कहा और आगे आकर कृषा को अपनी बाहों में उठा लिया। छोड़ो मुझे युग, मुझे अब कुछ क्रिएटिव नहीं करना, कृषा उसकी बैक पर मारते हुए बोली। युग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कृषा को बेडरूम में छोड़ा और रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। युग की इस हरकत पर कृषा जोर से चिल्लाकर बोली, तुम बहुत बुरे हो युग, मेरे नानू की ग्रेव तोड़ रहे हो जो मेरी मम्मा ने इतने प्यार से बनवाई थी। युग ने कृषा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वापस गार्डन में आ गया। कृषा खिड़की के पास आ गई और युग को देखने लगी। वो वहां से युग को अच्छे से देख सकती थी। मेरे बिना तुम अकेले कुछ नहीं पाओगे, मेरी रेटिना स्कैन करते टाइम इस बार मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी, कृषा तेज आवाज में बोली। युग का इसका कोई असर नहीं हुआ, उसने ग्रेव को तोड़ दिया था और अब फावड़े की मदद से उसे खोद रहा था। कृषा चुप हो गई और गौर से युग की तरफ देख रही थी। थोड़ा खोदने के बाद युग को एक छोटा वुडन बॉक्स मिला। युग ने उसे निकाला और कृषा की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराया, मानो वो उसका मजाक बना रहा हो। युग ने उस बॉक्स को कृषा को दिखाते हुए कहा, कृष, इसमें रेटिना स्कैन का ऑप्शन क्यों नहीं है? कृषा ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ चली गई। युग कृषा के पास आने लगा। उसने रूम का डोर खोला और उसके पास आया। कृषा ने युग की तरफ देखा और फिर मुंह बनाकर दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। युग ने उस बॉक्स को और चौथे पड़ाव पर मिले पेन ड्राइव को कृषा के सामने रखा और फिर धीरे से कहा, देखना नहीं चाहेगी कि इन सब में क्या है? जहां कृषा पहले युग से नाराज थी, वहीं अब चौथे और छठे पड़ाव में मिले एसेट्स के बारे में जानने के लिए वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। पहले उसे ये चीज भले ही बोरिंग लगती हो, लेकिन युग के साथ रहते हुए वो इन सब में काफी इंटरेस्ट लेने लगी थी। युग उस बॉक्स और चौथे पड़ाव में मिले पेनड्राइव के साथ कृषा के साथ था और वो दोनों देखने जा रहे थे कि उसमें क्या हो सकता है। युग ने पेनड्राइव को अपने आईपैड में डाला और उसे स्कैन करने लगा। जैसे ही उसने चिप में मौजूद फाइल्स को देखा, उसके फेस पर ईविल स्माइल थी। कृषा को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था। वो हैरानी से युग की तरफ देख रही थी। उसने उसी लहजे में पूछा, इसमें क्या है युग, जो तुम इतना स्माइल कर रहे हो? युग ने कृषा को बताते हुए कहा, इसमें वो है क्रिश, जिसे हर कोई पाना चाहता है, खास करके कोई माफिया पर्सन। इस चिप में अंडरवर्ल्ड के हर छोटे बड़े माफिया से जुड़ा वो राज है जिसके दम पर उन्हें काबू किया जा सकता है। इसके साथ कुछ पेपर्स भी थे, उनमें भी कुछ इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स थे। सब जानने के बाद कृषा खुश होकर बोली, अरे वाह, ये तो सच में काम की चीज है। फिर तो तुम किसी को भी काबू कर सकते हो। लेकिन मुझे ये सात पड़ाव और बाकी चीजें समझ नहीं आई युग, इन्हें क्यों बनाया गया और ये मेरे ही दादू के पास क्यों है? इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पता है, इसके जरिए हम किसी भी माफिया को रूट से खत्म कर सकते हैं। एंड आई गॉट दिस, आई एम सो हैप्पी क्रिश। युग काफी एक्साइटेड होकर बात कर रहा था। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि इस वक्त वो काफी खुश है। कृषा ने उसे देखकर स्माइल दी। चलो अब इस बॉक्स को खोलकर देखते हैं। ये बॉक्स देखने में इतना एक्साइटिंग लग रहा है, तो जरूर इसमें कुछ अच्छा ही होगा, कृषा बोली। युग ने उसकी बात पर हामी भरी। उसने उस बॉक्स को खोला। बॉक्स के कोई लॉक नहीं था और वो आसानी से खुल गया। उसमें बस एक चाबी और मैप था, आखिरी पड़ाव का नक्शा और माफिया किंग बनने की चाबी। सो मैंने ये कर लिया क्रिश, युग ने उसे देखने के बाद कहा और फिर कृषा को अपने करीब खींच लिया। उसने उसके गले लगाया और आंख बंद करके उस लम्हे को महसूस करने लगा। युग की खुशी में कृषा खुश थी। पहले भले ही युग ने अकेले माफिया किंग बनने का सपना देखा हो, लेकिन अब वो कृषा का भी सपना बन चुका था। युग को अपनी मंजिल पाते देखकर कृषा को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था।